नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।